अरमान की आवाज में हल्की सी कमजोरी थी, मगर उसमें एक अजीब सी तड़प भी खुली हुई थी। मुझसे मिलने आ जाओ, बीमार हूं मैं, तुम्हें आना चाहिए, फोन के उस पार से अरमान ने धीमे स्वर में कहा। नूर अब तक चुप थी, उसके होंठ तो खामोश थे मगर दिल में कई सवाल उठ रहे थे। मन के किसी कोने से एक आवाज बार बार कह रही थी कि उसे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि अरमान सच में कैसा है। जब ताई अम्मी आएंगी तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी, नूर ने धीरे से कहा। क्यों, अकेली नहीं आ सकती? अरमान की आवाज में हल्की सी शरारत और उम्मीद दोनों थी। नूर कुछ कहती उससे पहले ही उसने फोन काट दिया, शायद वो खुद अपने दिल की धड़कनों से घबरा गई थी। उधर दरवाजा आधा खुला था और वहीं से गुजर रही सादिया उनकी सारी बातें सुनकर रुक गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, वो मन ही मन मुस्कुरा उठी। अगर नूर सच में अरमान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो फिर देखना इस घर में कैसा तूफान आएगा, सादिया के दिमाग में चालें चलने लगी। उसे यकीन था कि अगर ये बात रेहाना बेगम तक पहुंची तो वो नूर को इस घर में टिकने नहीं देंगी, और वो तो वैसे वो ही नूर को रेहान से ज्यादा अहमियत मिलने से खुश नहीं था। चलो मेरे साथ चलो, मैं जा रही हूं अरमान के घर, सादिया ने बनावटी सादगी से कहा। नूर ने एक पल को उसे देखा, फिर बिना कुछ सोचे उसके साथ चल दी। शायद दिल अब दिमाग की सुनने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों अरमान के घर पहुंच गईं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुईं, हाल में बैठी जुबैदा बेगम ने सिर उठाकर देखा। आ जाओ सादिया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कैसा है अरमान? सादिया ने चिंता जताते हुए पूछा। अब ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है, जुबैदा बेगम ने जवाब दिया। नूर ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। सादिया नूर को साथ लेकर सीधे अरमान के कमरे की तरफ बढ़ गईं। दरवाजा खुला और अरमान बिस्तर पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। नूर को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कैसे हो अरमान? सादिया ने औपचारिकता से पूछा। मैं तो ठीक हूं, आप लोग ठीक हैं? अरमान की नजर मगर सादिया पर नहीं, नूर पर टिकी हुई थी। नूर ने धीमे से पूछा, लग रहा है कि आप अब ठीक हो रहे हैं। अरमान हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, अब ठीक हो रहा हूं। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो ये बात नूर के आने की वजह से कह रहा था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे दोनों की नजरें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही हों जो शब्दों में कहना मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर बाद सादिया उठ खड़ी हुई। चलो नूर, अब चलते हैं। नूर ने एक बार फिर अरमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और एक अनकही मोहब्बत की झलक भी। दोनों वापस आ गईं, मगर उस मुलाकात में कुछ ऐसा था जो बदल चुका था। शायद अरमान और नूर के बीच जो शुरू होना था वो अब शुरू हो चुका था। और सादिया, वो बाहर से तो मुस्कुरा रही थी मगर उसके दिल में एक और ही खेल चल रहा था। उसे लगता था कि उसने जो बीज बोया है उससे इस घर में एक दिन बड़ा तूफान उठेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे चलकर वो खुद भी ऐसा कदम उठाने वाली है जो नूर की जिंदगी को तार तार कर देगा। सादिया और नूर जैसे ही अंदर आई, नूर बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके कदम तेज थे, जैसे वो खुद से भाग रही हो। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल के लिए दीवार से टिककर खड़ी रह गई। उसके दिल की धड़कन अभी तक तेज थी। अरमान का चेहरा, उसकी वो मुस्कान और उसकी आंखों में झलकती खुशी, सब कुछ बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं तो ठीक हूं, अब ठीक हो रहा हूं, अरमान के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। नूर समझ चुकी थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा था, मगर वो इस एहसास से खुद को बचाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी खुद को संभाला। उसे कॉलेज के लिए तैयार होना था। तैयार होकर ही वो नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करेगी। उधर सादिया अपने कमरे में चली गई थी। डाइनिंग टेबल पर अभी तक रेहान नहीं पहुंचा था। आमतौर पर वो समय का बहुत पाबंद था, मगर आज अजीब सी खामोशी थी। सादिया को थोड़ा अजीब लगा। वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही अंदर गई उसने देखा कि रेहान अभी तक तैयार नहीं हुआ था। वो नाइट सूट में ही सोफे पर बैठा था और उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी झलक रही थी। सादिया ने भौहें सिकोड़कर उसे देखा। आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? उसने पास आते हुए पूछा। रेहान ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोला नहीं। सादिया हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। समझ गई, आप अरमान की वजह से परेशान हैं कि उसे क्या हो गया। वो बेफिक्री से बोली। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खा लिया होगा उसने इधर उधर कुछ, आप आराम से तैयार होकर ऑफिस जाइए। सादिया की आवाज में लापरवाही थी, मगर उसे क्या पता था कि रेहान की असली परेशानी अरमान नहीं नूर थी। रेहान की आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे थे, साफ दिख रहा था कि उसने रात भर ठीक से नींद नहीं ली, क्योंकि रात भर उसे नूर के सपने आते रहे थे। हर सपने में नूर थी, कभी हंसती हुई, कभी उसकी तरफ देखती हुई, और कभी इतनी करीब कि वो खुद से डर गया था। रेहान ने कभी अपने दिल की उस कमजोरी को स्वीकार नहीं किया था, वो हमेशा इसे दबाता रहा था, क्योंकि नूर उसके लिए क्या थी ये सवाल खुद उससे भी जवाब मांगता था। मगर अब हालात बदल रहे थे, नूर उसके दिल और दिमाग पर इतनी हावी होने लगी थी कि अब तक जो बात छिपी हुई थी शायद वो अब छिपने वाली नहीं थी। रेहान ने अचानक गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी किसी ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। उधर नूर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी, कॉलेज की ड्रेस पहनते हुए भी उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखों में आज एक अलग सी चमक थी, मगर उसके साथ एक डर भी छिपा हुआ था, क्योंकि वो खुद से एक सवाल पूछ रही थी, क्या सच में उसका दिल अरमान की तरफ झुकने लगा है, और अगर ऐसा हुआ तो इस घर में क्या होगा। नीचे डाइनिंग हॉल में सुबह धीरे धीरे शुरू हो रही थी, मगर किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द इस घर की शांति टूटने वाली है। एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो नूर, अरमान, सादिया और रेहान चारों की जिंदगी में तूफान बनकर आएगा। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ रिश्तों को नहीं हिलाएगा बल्कि कई सच्चाइयों को भी बेनकाब कर देगा, और जब वो सच सामने आएगा तो शायद इस घर की कोई भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। रेहान ऑफिस के लिए निकल गया था, उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, मगर दिल के अंदर जो हलचल थी वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। उधर फरीद खान को भी किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए वो सुबह ही निकल गया था। घर में अब सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। नूर भी तैयार होकर अपनी यूनिवर्सिटी चली गई थी। पूरा दिन यूं ही गुजर गया, मगर नूर अरमान से मिलने नहीं जा सकी। दिल तो उसका बार बार कह रहा था कि वो जाकर देखे कि अरमान कैसा है, मगर उसके लिए ये इतना आसान नहीं था कि वो सीधे अरमान के कमरे में उसके घर चली जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये कई सवालों और कई रिश्तों के बीच खड़ी एक पतली सी दीवार थी। दिन भर क्लासेस के बीच भी उसका ध्यान कहीं और ही था, कभी वो किताब खोलती, कभी मोबाइल की स्क्रीन देखती, और कभी यूं ही खिड़की के बाहर देखने लगती। शाम कब ढल गई उसे खुद पता नहीं चला। रात को सबके साथ उसने खाना खाया और फिर अपने कमरे में आ गई। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, टेबल लैंप की रोशनी में वो अपनी किताब खोलकर पढ़ाई करने लगी, मगर पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। नूर ने मोबाइल उठाकर देखा, स्क्रीन पर अरमान का नंबर चमक रहा था। उसके होंठों पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई, उसने तुरंत कॉल उठा ली। अभी तक सोए नहीं? नूर ने हल्के से पूछा, बीमार लोगों को तो जल्दी सो जाना चाहिए। फोन के उस पार से अरमान की धीमी आवाज आई, नींद कैसे आएगी? क्यों क्यों नहीं आएगी? नूर ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुमसे मिलना है, बहुत सी बातें करनी है,
फिर ही नींद आएगी।